Hello everybody, warm welcome to Sonia's podcast where amazing things happen. Well, the topic for today is what's up emotions. आज हम emotions के बारे में बात करने वाले हैं और आज की जो पूरी podcast है ना ये एक concept से inspired है. ये concept research की थी मिस्टर डेविड हॉकिंस ने. करीब 20 से 25 साल की रिसर्च की थी उन्होंने ओके ह्यूमन इमोशंस के ऊपर और सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर. उन्होंने ये चीज़ को पूरी तरह से अपनी एक किताब में लिखी है. नाउ हाउ मच डू यू नो योर सेल्फ. आप अपने आप को कितना जानते हैं, अपने इमोशंस को कितना जानते हैं. अब ना वो बड़ी एक प्यारी कॉन्सेप्ट हमसे शेयर करते हैं. वो कहते हैं पानी जो होता है ना उसे जब आप बॉईल करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है, उसे जब फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो आइस बन जाता है ओके. एक ही पानी बट अलग अलग फॉर्म्स लेना शुरू होता है. वैसे हमारी सोल भी ना अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करती है अपने लाइफ में ओके. लेकिन जिस इमोशन पे हम अटके पड़े रहते हैं ना लाइक वो हमारा घर कर लेती है हमारी सोल में ओके. सो हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है दैट इज़ नॉट दैट आई एम अ लॉयर, आई एम अ टीचर, यू नो दैट इज़ फॉर द वर्ल्ड. हमारी ट्रू आइडेंटिटी हमारा माइंड है यू नो, कि हमारा कॉन्शियस लेवल इस समय कहाँ है, दैट इज़ आर ट्रू आइडेंटिटी ओके. सो आज का पूरा पॉडकास्ट मैं आपसे बात करने वाली हूँ उनका एक बढ़िया कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड एज मैप ऑफ कॉन्शियसनेस ओके. अब इसमें वो कहते हैं कि हर इंसान जो है ना वो इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है यू नो. एंड उन्होंने ना एक जैसे टेबल बनाई है एक, तो वो टेबल मैं आपसे शेयर करूँगी और एक एक करके सारे इमोशंस मैं आपके आगे एक्सप्लेन करूँगी. सो सबसे नीचे उन्होंने रखा है शेम, फिर है गिल्ट, फिर है एपथी, फिर है ग्रीफ, फिर है फियर, फिर है डिज़ायर, फिर है एंगर, फिर है प्राइड, करेज, न्यूट्रैलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीज़न, लव, joy, peace and the ultimate consciousness is enlightenment. तो पता है वो बड़े प्यार से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं. एंड आज इस पॉडकास्ट में मैं आप लोग से वो चीज़ें शेयर करूँगी जो आपको भी एक तरह से ना अंडरस्टैंडिंग देंगे कि आपकी इमोशनल इमोशंस में चल क्या रहा है. लाइक यू लिटरली अंडरस्टैंड व्हाट्स अप विद माय इमोशंस एंड आप कहाँ आपके इमोशंस घर करके बैठे हुए हैं. सो उनके रिसर्च के हिसाब से आज की दुनिया में मोर एंड मोर पीपल टुडे आर लिविंग ऑन लोअर लेवल्स. तो उन्होंने ना तीन लेवल्स बनाए हैं. जो शेम से फियर का लेवल है ना वो सफरिंग लेवल है. यहाँ लोग जो रह रहे हैं ना इस इमोशनल एनर्जी, इस कॉन्शियसनेस में, ये सफ़र कर रहे हैं. फिर जो डिज़ायर से लेके रीजनिंग तक रह रहे हैं, दे जस्ट गेटिंग बाय लाइफ, बाई लाइफ चल रही है राइट. जो ऊपर का लेवल है जहाँ लव, पीस, जॉय है, वो प्योर कॉन्शियसनेस के लोग हैं यू नो. हम कहते हैं ना प्योर सोल है ये करके, दैट बिकॉज वो प्योर सोल की एनर्जीज में लव है, पीस है, जॉय है. एंड जो अल्टीमेट है दैट इज़ एनलाइटमेंट ओके. तो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड. एक एक चीज़ को बड़े प्यार से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. एंड आप खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट भी कीजिए जब आप ये चीज़ सुन रहे हैं कि हाँ मैंने लाइफ के इस पीरियड में ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी यू नो. जब हम एक शिफ्ट करते हैं ना, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपके इमोशंस जब जंप करते हैं ना, से फॉर एग्जांपल गिल्ट का इमोशन नीचे है, सबसे लोअर लेवल पे है राइट. लेकिन गिल्ट से जब आप ऊपर उठ के लव में चले जाते हैं तो वो जो शिफ्ट आता है ना आपके लाइफ में, आप एक्चुअली देखते हैं वो कितना ब्यूटिफुल पॉजिटिव शिफ्ट होता है. इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल शिफ्ट दैट हैपन्स. सो लेट अस टुडे अंडरस्टैंड हमारे इमोशंस को समझें यू नो. अगर आप लोअर लेवल पे हैं, आपके इमोशनल बोलते ना घर कर गए आपके माइंड में लोअर लेवल के ऊपर, तो डू नॉट वरी, आप डे बाय डे कोशिश कर करके धीरे धीरे आगे आ सकते हैं। अब लोअर लेवल से बीच वाले लेवल पे जाना आसान है, बीच वाले लेवल से एकदम प्योर अल्टीमेट कॉन्शियसनेस में जाने को टाइम लगता है। सो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, यू नो सबर का फल मीठा होता है, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए। जैसे हम लाइफ में स्कूल से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से हम फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसी तरह हमें इमोशंस में भी ना आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद नंबर वन, दैट इज़ शेम। ओके, नाउ शेम का एनर्जी है ना, दैट इज़ वेरी क्लोज टू डेथ का एनर्जी। वाई? बिकॉज जो लोग आपको शर्मिंदा करते हैं, यू नो, अरे इसको तो ये नहीं आता, इसको तो वो नहीं आता, इसका तो ऐसे नहीं, यू नो, वो आपको ना लाइफ में गिराते बहुत हैं, यू नो, कि अरे इसको ये नहीं आता, ये ऐसी है, ये वैसी है, मोटी है, पतली है, वो आपको। शेम का एनर्जी ह्यूमिलिएशन से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होता है। ओके, मतलब वो बहुत लोग जब आपको ह्यूमिलिएट करते हैं, बार बार आपको ताना कसते हैं, यू नो, कि ये ऐसी है, ये वैसा है, आपको गिराया जाता है, तो दैट इज़ व्हेन ना वो जो प्रीडोमिनेंट जो इमोशनल स्टेट होता है ना, वो ह्यूमिलिएशन का होता है, यू नो। एंड इस स्टेट में ना आपको लाइफ बड़ी मिजरेबल लगती है, आपको लगता है कि ये क्या, ये जीने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है जीने का इस लेवल के ऊपर। फिर आपको गॉड भी ना ऐसे लगता है कि वो आप ही से बदले ले रहा है, यू नो, आप ही का ध्यान नहीं दे रहा है, आप ही के लाइफ को उसने ऐसा करके छोड़ दिया हुआ है, यू नो। इस लेवल पे अगर आपको इस लेवल से ऊपर बढ़ना है, तो आपको बहुत एक प्यारी चीज़ सीखनी पड़ेगी, दैट इज़ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब निकाल दो, लोगों की बातों को सुन के एकांत से निकाल दो, उसको अपने दिमाग उसके जहन में घर नहीं करने दो। यू नो, अक्सर आपने देखा होगा कई बार घर के बड़े अपने बच्चे की ना पूरी सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, वो बार बार उसको शेम करते हैं, तू ऐसी, तू वैसा, तू तो ये काम नहीं करता, तू तो, उसको ना लिटरली अंदर से ख़त्म कर देते हैं करके उसकी सेल्फ एस्टीम को। एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ जिससे आप ये चीज़ बेटर समझ पाएंगे। सो एक बार एक आदमी होता है, उसने कोई गुनाह किया होता है, तो उसको बादशाह के पास सज़ा लेने के लिए जाते हैं। बादशाह कहता है कि इसको वापस अपने गांव भेज दो करके, यू नो, सबके सामने, और सबको बता दो कि इसने ये किया है करके गुनाह। तो वो बकायदा बादशाह को कहता है कि मुझे तू पहाड़ से गिरा दे, मुझे तू फांसी दे दे, मुझे वो मंजूर है, लेकिन मुझे मेरे ही लोगों के आगे गिरा मत, यू नो, दूसरों की आंखों में, जिन लोगों में, जिस समाज में मैं उठता बैठता हूँ, वहाँ मुझे गिरा मत करके, क्योंकि पहाड़ से गिरना आसान है, किसी की नज़रों से गिरना वर्स्ट है, यू नो। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप इस छोटी सी स्टोरी से एक बड़ा प्यारा सा मॉरल ऑफ द स्टोरी निकाल सकते हैं कि किसी को ना गिराओ मत। उन्हें अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन भी करनी है कि वो गलत कर रहे हैं, क्लोज द डोर, सिट वन ऑन वन विद द पर्सन एंड उनको समझाइए कि बेटा ऐसे नहीं, आपने ऐसे करना है, क्योंकि अगर आप ये गलती बार बार रिपीट करेंगे ना, तो ये आप ही को नुकसान देगी आगे जाके। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल, यू नो, बच्चों के साथ स्पेशली शेम एसोसिएट मत कीजिए, इवन बड़ों को भी बहुत हर्ट होती है, तो बी वेरी केयरफुल आप किस वे में अपनी ज़बान को यूज़ करते हैं। ओके, अभी ना हम पता किसी को पसंद क्यों करते हैं, हमें कोई क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज वो हमें वैलिड फील कराते हैं, यू नो, बिकॉज दैट पर्सन मेक्स यू फील वैलिड, तभी वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई आपको बार बार शेमफुल फील कराए, आपको ह्यूमिलिएट करे, तो वो इंसान आपको अच्छा नहीं लगेगा, गारंटीड है। जो इंसान आपको ह्यूमिलिएट करेगा ना बार बार, एवरी टाइम, वो आपको कभी, यू स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन, यू नो, आपके मन में उस इंसान के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नफरत ही नफरत आना शुरू हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप किसी के वूंड्स पे ना प्रिक ना करें, ओके एक ना बहुत अच्छी साइन है, जो बड़े लोग होते हैं ना, द पीपल हु हैव दैट लार्ज हार्टेडनेस, दे नेवर प्रिक ऑन अदर्स वूंड्स, यू नो, वो शर्मसार नहीं करते हैं दूसरों को. वो पता है क्या बोलते हैं, छोड़ दो बेटा इस टॉपिक को, आगे बात करते हैं, बस ये गलती दोबारा ना करना, इसमें आपका नुकसान है. वो एक लाइन में आपको बहुत आगे लेके जाते हैं. वो आपको शर्म में डूब जा, मर जा, ऐसे सब वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं करके. तुम मरा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तुम मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसे सारे वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं. तो शेम सबसे लोएस्ट एनर्जी है, और यहाँ अगर बार बार किसी को फैमिली में ये किया जाता है ना, तो वो अपने आप को ना ह्यूमिलिएट फील कर करके अंदर से ख़त्म हो जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि आप किसी को शर्मिंदा ना करें. यू नो, अगर आपको किसी की कोई बात नहीं समझ आ रही है, उन्हें अपने लेवल पे समझाएं, उनके लिए दुआ करें, एंड भगवान से कहें कि भगवान इसे शेम से उठा के लव और प्योर कॉन्शियसनेस में लेके आए. यू नो, बट एटलीस्ट पब्लिकली तो बिल्कुल ना करें. इवन अपने घर में भी, आपके घर में कोई दूसरे लोगों के सामने उनको तोड़िए मत, उनको रूम में लेके जाके अलग से बात समझाइए, बिकॉज दैट विल हेल्प देम इन अ बिग वे. चलो, शेम ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ये सबसे लोएस्ट लेवल है करके. यू नो, बड़े लोग ना जब ह्यूमिलेटेड होते हैं घर में बार 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 बार, तो वो इनफेक्ट मजबूर हो जाते हैं, उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और वो इतने गिरा दिए गए होते हैं ना, कि वो अल्टीमेटली उस लेवल पे चले जाते हैं. कई बार शेम वाली थॉट्स इंसान खुद भी अपने मन में लाता है, और यू नो, वो उसके अंदर वो नेगेटिविटी कैरी करता है, एंड देन चूजेज़ अ रॉन्ग पाथ. सो इस एनर्जी लेवल पे यू नो, हम सब ट्रैवल करते हैं फ्रॉम शेम टू ऊपर लव एंड एनलाइटमेंट. हम सब इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, बट देखिए कि जब आप शेम एक्सपीरियंस करते हैं, आप चाहिए तो एक लेटर लिख लें और अपने शेम को उस पर निकाल दें, या किसी एक कोर फ्रेंड से, फ्रेंड नहीं है तो कोच से बात करके आप वो चीज़ बाहर निकाल दें मन में, एंड उसके बारे में फिर नहीं डिस्कस करें. अगर आपने कुछ ऐसा किया भी है ना, इट इज़ बेस्ट टू रिमूव इट वंस, नेवर रिपीट इट इन साइकिल इन फ्रंट ऑफ एनी बडी. ओके, नंबर टू, चले, दैट इज़ गिल्ट. गिल्ट मतलब पछतावा. क्लोज वर्ड अगर यूज़ करूँ तो रिग्रेट. यू नो, आपने कुछ किया और आपको उसका पछतावा है. यू नो, आपको ये लगता है कि ओ माई गॉड, ये मैंने क्या कर दिया करके. नाउ गिल्ट, जनरली गिल्ट के साथ जो प्रीडोमिनेंट इमोशनल स्टेट होता है वो है ब्लेम का. मतलब आप देखेंगे गिल्ट और ब्लेम ना बड़ा एसोसिएट होता है. इंसान या तो खुद को ब्लेम करता है या कोई और आपको ब्लेम करता है फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, तो आपके अंदर वो गिल्ट का फीलिंग आता है. यू नो, अभी यहाँ ना आपका व्यू ऑफ लाइफ होता है कि ये बंदा ईविल है, ये सिचुएशन बहुत नेगेटिव है. बिकॉज जब भी आप किसी को ब्लेम करते हैं तो आपको पता है कि वो मन में ना एनर्जी बहुत ईविल वाली आती है करके, और खुद के बारे में भी आपको ऐसे ना बहुत डेरोगेटरी फील होता है कि ये मैंने क्या किया. तो बंदा ना इसमें डिस्ट्रक्शन मोड पे चला जाता है जब वो गिल्ट के रास्ते पे होता है. इट अल्टीमेटली टेक्स यू ऑन अ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन अ मेजर वे. सो आपने ना इस समय एक बात अंडरस्टैंड करनी है, चाहे किसी और ने बहुत गलत काम किया है तो आपने उसको ब्लेम नहीं करना है. और अगर आपने गिल्ट एक्सपीरियंस किया है, यू नो, इफ़ यू आर फीलिंग गिल्टी बिकॉज आपने कुछ बहुत गलत कर दिया है, तो एक चीज़ आपने याद करनी है कि गॉड इस समय आपको देख रहे हैं और उनकी रहमत उनके गज़ब से बड़ी है. That means God की mercy, God की forgiveness, God की punishment से बहुत बड़ी. God ना रहम दिल God है. वो कहते हैं बेटा तूने गलती की ना, कोई बात नहीं, बस अब आग ही मत करना, यहीं से तू अपने आप को सुधार दे, यू नो। और जब आप गलती करते हो और आप शर्मिंदा होते हो ना गॉड के आगे कि हाय गॉड मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। गॉड को तो ऐसे लोग बहुत प्यारे लगते हैं, उनको तो इतना अच्छा लगता है जब मेरा बच्चा कोई गलती करता है तो मेरे पास चल के आता है। गॉड फील्स वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चे ने गलती की, लेकिन उसे एहसास है उस गलती का, तो गॉड लव सच पीपल। तो जब आप 10 कदम चलते हैं ना रिपेंटेंस की तरफ, आप तौबा करते हैं, आप भगवान को बोलते हैं सॉरी गॉड, आप 10 कदम गॉड की तरफ चलते हैं ना माफ़ी मांगने के लिए, तो भगवान 10,000 कदम आपकी तरफ चलते हैं आपको माफ़ करने के लिए। दैट इज़ व्हाट गॉड इज़, तो एंड सेम यही चीज़ हमें समझनी भी कि जब कोई और भी गलतियाँ करता है ना और वो माफ़ी मांगने के लिए 10 कदम आगे आते हैं, तो आपने भी भगवान की तरह 10,000 कदम आगे बढ़ के उनको माफ़ करना है। फॉरगिवनेस ना आपकी एनर्जी लेवल को बदल देती है, वो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव लेवल पे लेके जाती है। तो फॉरगिवनेस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है गिल्ट से बाहर निकलने के लिए। अब बात करते हैं एपथी की। एपथी इज़ बेसिकली वेलापन, कुछ नहीं करना, इनको बदलना ही नहीं है लाइफ में, जो चल रहा है चलने दो, लेज़ी पड़े हैं, इनका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। सो एपथी बेसिकली ना आपके अंदर एक, आपको ऐसे लगता है मेरी लाइफ तो होपलेस है, मैं क्या ही करूँगा जो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं इतना फ़ेल हो चुका हूँ, अब मेरे को वापस ट्राई करने की इच्छा भी नहीं होती है। तो उनके मन में ना एक सैडनेस होती है, एक काइंड ऑफ ऐसे होता है कि क्या करूँ मैं, मैं तो बस पड़ा हूँ, ऐसे एक फीलिंग आती है। यहाँ ये भगवान को एक तरह से कंडेम करते हैं कि यार मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, एंड ये डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये इन्हें पता भी नहीं चलता है कि इनकी लाइफ किस डायरेक्शन में चल रही है। सो ये भी एक एपथी इज़ अ वेरी, इट्स अ सैड स्टेट टू बी इन, नोबडी वांट्स टू लिव हियर इमोशनली, बट यस ये एक चीज़ है जो आपको सफरिंग मोड में रखती है। अब एपथी से बाहर निकलने के लिए ना मैं हमेशा कहती हूँ एपथी से निकल के आप ऊपर लव प्योर जॉय के स्टेट पे जा सकते हैं बाय द पावर ऑफ प्रेयर। अगर आपको लगता है कि एपथी है तो सबसे पहले नियम से रोज़ ना दुआ करें, रोज़ प्रेयर करें कि गॉड मुझे यूज़फुल बना, मुझे इस जो तेरी कायनात जो तूने बनाई है ना इसमें एक ऐसा ज़रिया बना जिससे मैं इस दुनिया के लिए यूज़फुल बनूँ। तो योर सिंपल प्रेयर, अ वेरी सिंपल प्रेयर, गॉड मेक मी यूज़फुल, एंड फिर आप देखेंगे जब आप ये चीज़ रोज़ प्रेयर करेंगे ना कि मुझे यूज़फुल बना, मुझे तेरे कायनात में यूज़ कर, मुझे यूज़ कर अपने कामों के लिए, व्हेन यू प्रे लाइक दैट ना तो आप देखेंगे कि वो गॉड विल सेंड दोज पीपल हु वुड नीड यू इन सम वे और अनदर, छोटे काम के लिए बड़े काम के लिए वो आपको ज़रिया बनाएंगे। पहले आप मांगो तो सही, अगर आप एपथी में हो ना तो वेलेपन के उस स्टेट में हो ना, तो रेदर देन वहीं टिकने से स्टार्ट प्रेइंग अबाउट इट कि मुझे यहाँ से निकालें, मुझे यूज़, मुझे इस आपकी कायनात में कोई ऐसा ज़रिया बनाएं, एक ऐसा काम दें कि मैं यूज़फुल हूँ फॉर ह्यूमैनिटी, एंड वो आपको फिर उस वे में यूज़ करना शुरू कर देंगे। और कई बार आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आएंगे आपकी मदद के लिए, दे विल कम एंड यू विल बी अ चैनल फॉर इट, बट प्रे फॉर इट, इसको सच्चे दिल से प्रे कीजिए, गॉड यूज़ मी, यूज़ माई लाइफ, आई नो देर इज़ अ विजन फॉर माई लाइफ दैट इज़ ग्रेटर देन माई इमेजिनेशन, यूज़ मी राइट नाउ, यूज़ मी टूडे। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऊपर के लेवल पे हम जाते हैं दैट इज़ ग्रीफ। ग्रीफ इज़ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। इसमें बड़ा रिग्रेट होता है कि अरे ये इंसान मेरे लाइफ में नहीं है, या ये घर मेरे लाइफ में नहीं है, या ये सक्सेस मेरे लाइफ में नहीं है, तो उसका एक दुख होता है. एक रिलेशनशिप मेरे लाइफ में नहीं है, या हेल्थ मेरे लाइफ वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी, तो एक ना रिग्रेट होती है. तो इसमें ऐसे लाइफ ना वैसे लगता है ट्रेजिडी हो गई है मेरे साथ, एक बहुत ट्रेजिक फील होता है. और आप ना अंदर से जैसे थकावट होती है, एक ऐसी थकावट ना जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से मैं निकलूँगी कैसे, एक अजीब चीज़ आपको अंदर से तोड़ के रख देती है और आपको पता भी नहीं चलता है आप चल रहे हैं ऊपर से लाइक अ रोबोट की तरह ना. यू आर डूइंग, आप दिन के काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सोल लेवल पे आप में एक अजीब सी थकावट आ रही है और आपको ऐसे लग रहा है जैसे लाइफ चल रही है बस मैं ये दिन काट रही हूँ, मैं ये वक्त काट रही हूँ. तो जैसे आपने एनिमल्स को देखा है, वो बस उड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो बस थिंग्स आर जस्ट मूविंग. आप भी, आपका विल पावर जो होता है ना वो बहुत ख़त्म हो चुका होता है इस समय. आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी ख़त्म हो चुकी होती है, विल पावर ख़त्म होता है. अंदर से ना एक टूटापन होता है कि ये जैसे गम है ना, गम इंसान को अंदर से बहुत अंधेरे में लेके चला जाता है. लेकिन आपने ना ये बात समझनी है कि गम छोटे इंसान को खा जाता है और बड़े इंसान को बना जाता है. यस, इनफैक्ट मैं आपको ये बात अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से दूंगी. मेरी मदर की डेथ हुई थी जब मैं 13 साल की थी और मेरे सामने मैंने उनको जाते हुए देखा था. मेरे लिए वो गम ना, ट्रस्ट मी, मुझे अंदर से खा गया था, एंड बिकॉज मैं वीक थी, मुझे तो समझ भी नहीं थी कि मैं इस सिचुएशन को डील कैसे करूं. लेकिन लाइफ में कहते हैं ना, वहाँ से एक ये हुई कि उठना है, कोशिश करना है, आगे बढ़ना है. लेकिन जिस दिन मेरी आत्मा ने मुझे कहा ना कि अगर गम छोटे इंसान को खा जाता है और बड़े इंसान को बना जाता है, उस दिन मैंने कसम खाई अब तो मुझे बड़ा इंसान बनना ही बनना है. अपने लिए बनना है, मेरे खुदा के लिए बनना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं बनना है इस दुनिया में. अपने लिए खड़ा रहना है, अपने लिए. आई वॉन्ट टू बिकम द बिगर पर्सन, आई वॉन्ट टू बिकम दैट पर्सन विद अ बिग हार्ट, एंड मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मेरे लाइफ में गम का ऐसा बादल आया, वो ग्रीफ आया, तब मैंने प्रतिज्ञा ली. कहते हैं ना, अंदर से अपने आप को एक कहा कि नहीं, ये गम मुझे बना जाएगा. मेरी माँ का गम बचपन में मुझे खा गया था, लेकिन इस बार जब गम आया है, एंड द रीज़न वो साइकिल रिपीट हुआ है क्योंकि ये गम मुझे बना जाएगा. सो ग्रीफ इज़ सैडनेस, इट्स पेन, इट्स गम. और एक और चीज़ मैंने ग्रीफ को एक्सपीरियंस करते हुए लाइफ में सीखी कि ग्रीफ का मतलब पता है क्या होता है, गम का मतलब होता है कि आपकी मर्ज़ी थी लाइफ में ये हो और खुदा की मर्ज़ी थी लाइफ में ये हो. उस दोनों के बीच के गैप को ग्रीफ बोलते हैं, उसको गम बोलते हैं. मेरी मर्ज़ी थी कि ये इंसान ज़िंदा हो, लेकिन खुदा की मर्ज़ी थी कि ये इंसान ने तो जाना ही जाना है. उसका वक्त, उसकी रूह का वक्त आ गया. अगर मैं खुदा की मर्ज़ी के आगे सर झुका दूं तो ये गम चला जाएगा. वो बोलते हैं ना, उस पर खुदा इतना पावरफुल है. गॉड अगर आपको गम देते भी है ना, तो उस पर मलम आपके लिए पहले ही रेडी होती है. तो वो आपको सिर्फ मांगना होता है कि मेरा दिल गम में डूबा है, आके मुझे ऊपर से हील कर लें. एक और चीज़ मैंने जो ग्रीफ के फेज ऑफ लाइफ से सीखी, दैट वॉज दैट देर इज़ केयर इन एवरीथिंग. हर चीज़ में उसकी रज़ा है, हर चीज़. पत्ता भी हिलता है ना, उसकी मर्ज़ी से हिलता है. तो जो हो रहा है ये उसकी मर्ज़ी से हो रहा है. सो बहुत एक्सेप्टेंस, सरेंडर. और इससे जब आप निकलते हैं ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, आप छोटी छोटी खुशियों की वैल्यू करते हैं लाइफ में. समझो, मतलब जब आप एकदम गम के सागर में डूबे होते हैं ना, तो आप जब यू नो उसमें से निकलने की जब बारी आती है ना, तो आपको छोटी चीज़ें इतनी बड़ी लगती हैं, आपको आपको ऐसे आप हंसोगे आज तो आपको लगेगा अरे वाह आज मैं कितना हंसी हूँ, यू नो, अरे आज इतने दिनों के बाद मैं दिल खोल के मैंने हंसी हूँ, आज मैंने नए कपड़े पहने हैं, आज मैं इस जगह पे गई, मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, मुझे ये म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा। आपका लिटरली फोकस ऑफ लाइफ में ऐसे होता है कि मेरा छोटी छोटी जगहों पे फोकस आपका जाता है, सो यू स्टार्ट इन्जॉइंग। जब आप गम के बोलते हैं ना, इसमें से बाहर निकलते हैं ना, तो यू वैल्यू द जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, यू नो, एंड देर इज़ लॉर्ड ऑफ लव ऑफ गॉड अराउंड यू। जो भी बंदा ना इस समय गम के स्टेज से निकल रहा है, मैं आपको कह रही हूँ कि खुदावन है ना अपनी बकायदा एंजल्स भेजते हैं आपके चारों ओर एनकम्पेस करने के लिए, आपको सर्कल करने के लिए, जैसे ये गम आपको डुबा ना जाए, बिकॉज खुदा को पता होता है कि मेरा बच्चे का दिल छोटा हो गया है इस समय, वो गम के खाई में डूब रहा है, तो वो हमेशा हाथ भेजता है आपका, हाथ पकड़ के आपको वहाँ से निकालने के लिए। सो ट्रस्ट करें कि जो आपके लाइफ में है जिसकी वजह से बहुत गम आया है, और मैं मान सकती हूँ कई बार ना ऐसे लगता है कि ये तो ज़िंदगी भर का गम है, लेकिन मैं सच्ची बात कहूँ खुदावन इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं ना, कि वो आपको उस खाई से भी बाहर निकाल सकते हैं। आप कहें, आप उनसे दुआ मांगें, आप अपनी प्रेयर्स करें और आप उसमें हाथ जोड़ कर मांगें कि खुदा मुझे बाहर तो निकाल, मुझे इस गम की खाई से बाहर निकाल, मुझे इन अंधेरों से बाहर निकाल के खुशियों की रोशनी दिखा, यू नो। सो प्रे करें, यू नो, उठते बैठते। और प्रेयर का ये मतलब नहीं है कि आप एक मंदिर जाके कहीं बैठे, नहीं, दिल से बस बातें करें, कप चाय लेके बोलते हैं ना, बस खुदा से बातें करें। ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ योर एवरीथिंग, वो आपके साथ होंगे ना, आपको कभी अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जहाँ खुदा साथ नहीं होते ना, वहाँ लोगों की भीड़ में भी आप अकेला महसूस करेंगे। सो दैट इज़ वाई ये ग्रीफ से निकलने का लेकिन डिसीशन आपको बनाना है कि मैंने इस ग्रीफ से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ अगर आप टिके रहे ना बहुत साल, तो फिर वो सफरिंग वाली लाइफ होती है, फिर ऐसे लगेगा आपकी सोल ना सफ़र कर रही है। तो चलें अब आगे के लेवल पे चलते हैं, वो है फियर। फियर मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू डू समथिंग बट यू आर स्केर्ड, यू नो। आपने गाड़ी अगर कभी चलाई हो तो आप देखेंगे एक्सेलेरेटर दबाते हैं तो गाड़ी आगे जाती है, हैंड ब्रेक खींचते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। तो फियर एक ऐसा स्टेट है जहां आप एक्सेलेरेटर तो दबा रहे हैं बट साथ में आपका हैंड ब्रेक भी ऊपर है, मतलब वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, फियर ने आपकी हैंड ब्रेक खींच के रखी हुई है, यू नो। अगर एक माँ बहुत फियर और इनसिक्योरिटी में रहती है ना, आए मेरे बच्चों को क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो वो एक्सपोर्ट करती है इस फियर को अपने बच्चों में भी, बच्चे भी वही सोचेंगे हमारा क्या होगा आगे। लेकिन अगर एक माँ को ट्रस्ट है कि जो मेरा खुदा ये कायनात चलाता है, वो बोलते ना बर्ड्स को भी खाना देता है, जिसे पता नहीं होता उसने कल होना कहा है, उसे भी वो खाना देता है, तो क्या वो मेरा हाथ छोड़ेगा, यू नो। दैट जब एक मदर फेथ डेवलप करती ना अपने अंदर, अपनी थॉट्स के अंदर, तो वो एक्सपोर्ट होता है फेथ उसके बच्चों में भी। सो फियर ऑल्सो आपने बहुत बोलते हैं ना, इसमें फियर में आपको एंग्जाइटी बहुत होती है, आप नोटिस करेंगे हाथ हिलना, यू नो, दिल की धड़कनें भर जाना, राइट लेफ्ट, यू नो, सोना बहुत, जैसे अंदर से ना एक डर ऑल द टाइम होता है करके, और आप ना विड्रॉ करने लगते हैं, फिर लोगों से दूर चले जाने लगते हैं करके, बिकॉज आपको इतना फियर होता है, इतनी एंग्जाइटी होती है कि आपको किसी पे ट्रस्ट करने का मन ही नहीं करता है। सो आप ना पीछे पीछे हटते चले जाते हैं, आप विड्रॉ करते हैं लोगों से, अपनों से, आप में एक ना जैसे बेसिक कोर लेवल ऑफ ट्रस्ट ही ख़त्म हो जाता है अगर आप फियर में रहना एनर्जी लेवल पर शुरू करेंगे तो। सो ये जो थे मैंने अब तक जितने डिस्कस किए हैं, ये सफरिंग लेवल हैं। तो मैंने आपसे शेम डिस्कस किया, गिल्ट, एपथी, ग्रीफ, फियर, तो ये जो पांचों है ना, यहाँ पे जो सोल होती है ना हमारी, वो सफ़र कर रही होती है, ओके, वो जी नहीं रही होती है, ये सफ़र कर रही होती है सोल। अब ये इमोशंस सारे ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस करते हैं, हर इंसान इस इमोशंस को कभी ना कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, बट आपने ये नोटिस करना है कि वो इमोशन आपके माइंड में घर ना कर ले. यू नो, हम किसी की नेगेटिव बात सुनते हैं तो कैसे वो हमारे दिमाग में घर कर लेती है ना, तो घर नहीं, आपका दिमाग आपकी जागीर है, आपकी प्रॉपर्टी है. आप डिसाइड करेंगे मेरे दिमाग में कौन सी पॉजिटिव कमेंट्स रहेंगी, कौन सी नेगेटिव कमेंट्स रहेंगी. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप सोल लेवल पे अगर आपके मन में कोई भी ये इमोशन घर कर गया है तो बस अब से उठिए और आगे के इस पे जाने की कोशिश कीजिए. यू नो, अगर आप ग्रीफ पे हैं तो ग्रीफ से थोड़ा ऊपर फियर, फिर आगे ऊपर चलने की कोशिश कीजिए. मैं नहीं कहती हूँ ये एक ही दिन में होगा, लेकिन कई बार ना अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपको एक अवेयरनेस आना शुरू होती है कि हाँ, ये बात तो सोनिया बात तो ठीक कर रही है, मुझे अपने इमोशंस पे काम करना है अभी. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. डिज़ायर है नेक्स्ट. डिज़ायर मतलब आपकी एनर्जी ऊपर चली गई है, रेज्ड एनर्जी है, पीछे के सारे जो पीछे वाले सारे नेगेटिव इमोशंस हैं. डिज़ायर मैं कहूँगी पहला पॉजिटिव इमोशन है. यू नो, ख्वाहिशों को कभी भी मरने ना देना. यस, ख्वाहिशों को कभी मरने नहीं देना, चाहे आपकी लाइफ की जो भी एज क्यों नहीं हो. आपको घूमने की इच्छा है, आपको फेमस होने की इच्छा है, आपको एक्टिंग की इच्छा है, आपको सिंगिंग की इच्छा है, आपको फिट रखने की अपनी इच्छा है, आपको अच्छे कपड़े पहने. इच्छाओं को, ख्वाहिशों को ज़िंदा रखना, ये बहुत प्यारी होती है, ये इंसान को ज़िंदा रखती हैं ख्वाहिशें. यू नो, तो गोल्स होने चाहिए आपके लाइफ में, सो यू कैन गेट अप, ड्रेस अप, लुक गुड, फील वाओ. यू नो, एंड यू स्टॉप वरिंग एंड यू स्टार्ट लिविंग. इस स्टेज में डिज़ायर की जब ख्वाहिशें एकदम बोलते हैं ना स्ट्रांग होती, तो आपका मन करता है यू नो मैं जीऊँ लाइफ. यू नो, आप अपनी सारी वरीज, सारी तकलीफें, आप बोलते हैं भगवान बैठा है ना उठा लेगा मेरी सारी तकलीफें, मेरी वरीज, मेरी टेंशन है, वो बैठा है उठाने के लिए. और आप ना, आपको ऐसे लगता है सुबह उठ के मैं पूरा दिन जीऊँ. यू नो, मैं इतना दिल से जीऊँ, अच्छा खाऊँ, अच्छा पहनूँ, अच्छी बातें करूँ, अच्छे सच्चे दिल से काम करूँ, हॉबीज करूँ, डांस क्लास जाऊँ, वॉक पे जाऊँ, आपका मन करेगा चीज़ें करने के लिए. यू नो, जो आपको बोलते हैं ना उस आग को और भड़काना है. लाइक डिज़ायर इज़ अ बेबी. यू नो, जब वो अडल्ट होता है, विच अडल्ट्स अप इनटू पैशन. यू नो, कुछ लोगों को काम का बड़ा फितूर होता है. यू नो, सो जो आपकी ख्वाहिश है ना, वो आपका बच्चा है. इस बच्चे को आपको बड़ा करके फितूर बनाना है, पैशन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो दैट इज़ द पावर ऑफ डिज़ायर. अब डिज़ायर में ना आपको बड़ी क्रेविंग्स होती हैं. क्रेविंग, हाय मेरा मन है मैं यू नो ये ड्रेस खरीदूँ, मैं ये कपड़े पहनूँ, तो वो क्रेविंग आती है करके. और यहाँ आपको लगता है, आप कई बार डिज़ायर में एक ये भी चीज़ है कि आप उसके ना एनस्लेव हो जाते हैं. एनस्लेव मतलब आप उसके डिज़ायर आप पे भारी हो जाता है. यू नो, सो एक आपने बड़ी थिन लाइन, जैसे शॉपिंग की डिज़ायर होती है ना, आपको पता है कि इतनी करना इज़ गुड, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो रही है ना, ये आपका विजडम आपको बताता है. यू नो, सो डिज़ायर इज़ द फर्स्ट आई वुड से यू नो लाइक लिटिल बिट पॉजिटिव देन ऑल अदर इमोशंस जो हमने अब तक डिस्कस किए हैं. लेकिन यहाँ पे आपको घोड़े की तरह उसको अब काबू में करने भी आना चाहिए. यू नो कि शॉपिंग है, ईटिंग आउट है, ड्रेसिंग अप है, लुकिंग अ सर्टेन वे, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अपनी लाइफ को सिर्फ यही मत बना दीजिए. फिर यही अटक के मत बैठिए, ऊपर वाले इमोशनल स्टेट पे जाने की कोशिश कीजिए. अब डिज़ायर से हम जब आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ एंगर. अब एंगर कैन बी टोटली कंस्ट्रक्टिव इमोशन एंड ऑल्सो द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इमोशन. एंगर एक ऐसी चीज़ है ना, ये इंसान को बना भी सकता है और ये इंसान को तबाह भी कर सकता है. यू नो, एंगर कैन क्रिएट अ मैन एंड एंगर कैन डिस्ट्रॉय अ मैन. सम पीपल, आपने नोटिस किया होगा, वो एंग्री बर्ड्स होते हैं. यू नो, एंगर उनके लिए ना एक आदत बन चुकी होती है. जैसे कुछ लोगों को लेजीनेस की आदत है, ओवर ईटिंग की आदत है, यू नो, अल्कोहल और स्मोकिंग की आदत है, तो कुछ लोगों को एंगर की भी आदत हो जाओ, बात बात पे तड़प उठते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, इनको एंग्री बर्ड्स बोलते हैं. ऑल्सो आप नोटिस करेंगे ना कि लोगों के ना वाइब्स आपको उनके फेस पे दिखना शुरू हो जाएंगे. सो कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम एंगर के स्टेट में बार बार रहते हैं, आप उनके फेस को देख के वो वाइब्स देख सकते हैं उनके, कि यार ये बंदे में ना एंगर दिख रहा है, ये शायद मेरे सामने अभी चुप बैठा है लेकिन मुझे इसका दिख रहा है. और दुनिया में ना कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं, जो रूहानियत वाले लोग होंगे ना, सोलफुल लोग होंगे ना, वो कुछ ना भी बोलेंगे ना, उनकी वाइब से आप पकड़ लेंगे कि यार ये बंदी कितनी सही है, ये इंसान कितना सही है. आपको ना बस उनकी प्रेजेंस में रहना आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा. ये रूहानियत वाले लोग हैं, इनको आप लाइफ में मतलब इन पे आप तकलीफ़ें ही डाल दो बट इनकी रूह फिर भी आपको दुआएं देगी. यू नो ये बने, इनके मुंह से कर्स नहीं निकलेगा किसी के लिए, यू नो बिकॉज उनकी रूहें हैं ना, जानती हैं कि मेरा नसीब का मुझसे कोई नहीं छीन सकता, जो मेरे लिए मेरे रब ने लिखा है वो तो मेरी झोली में आकर ही रहना है. तो वो रूहानियत वाले लोग होते हैं. फिर कुछ घटिया लोग भी होते हैं, यू नो एंड बट वो उनका घटियापन एक ना एक दिन उनके फेस पे आ ही जाता है. आपने देखा होगा जब यू नो आप किचन में कभी गए हो, अगर आपने दूध उबाला होगा ना तो दूध को आप छान भी दो, ठीक है, अपने दूसरे कप में आप दूध को छान दो, लेकिन वो जो स्टेन आपने देखा है वो तरी जो रह जाती है, तो वैसे ही इंसान के अंदर जो पड़ा होगा ना, अगर वो निकाल भी दे तो उसके अंदर का वो निशान दिखता है, हमेशा दिखता है. सो इंसान के फेस पे, इंसान के उठने बैठने में, बिहेवियर में आपको निशान दिखेगा कि इस इंसान के अंदर एक्चुअली पड़ा क्या हुआ है. जो बंदे कर्सेस करते हैं दूसरों को, दूसरे का बुरा बोलते हैं, जो दूसरे की बर्बादी पे खुश होते हैं, या जो ट्रैप्स बनाते हैं दूसरों के लिए कि ये ट्रैप बनाएंगे, इसको गिराएंगे, इसको तकलीफ़ देंगे, ये उनके अंदर की नेगेटिविटी है जो आपको एक ना एक दिन उनके फेस पे दिखेगी, वो निशान वो वाइब्स आपको दिख ही जाएंगे. लेकिन अगर वो एक रूहानियत वाले बंदे को, एक रूहानियत इंसान को परेशान कर रही है ना, तो रूहानियत इंसान ना उनको कर्स बैक करता है, रूहानियत इंसान ना उनके लिए कोई ट्रैप बनाता है, वो अपने रब को याद करता है, उसका रब उसको वहाँ से बाहर निकाल के लेके चला जाता है, और उसका रब है ना उसे ऐसा इंसान बना देता है फिर जिसे तकलीफें कभी तोड़ ही नहीं पाती हैं. आप किसी का एक गिफ्ट छुड़ा लो, यू नो एक घटिया इंसान एक चीज़ चुरा ले, लेकिन जो रूहानियत वाला इंसान होता है ना, उसके नसीब में उस एक चीज़ चुराने की जगह भगवान करोड़ों अच्छी चीज़ें लिखता है. सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप अपने अंदर इमोशंस में क्या पाल रहे हैं. अगर आप एंगर पाल रहे हैं तो देखिए कि वो एंगर आपको ज़िंदगी में कुछ बना जाए, यू नो. लेकिन अगर आप बेवजह किसी को परेशान करने के लिए आप एंगर पाल रहे हैं तो वो आपको ही ले डूबेगा. कहते हैं बहुत प्रॉपर ब्यूटीफुल कहावत है कि आप कब्र खोदते हैं ना किसी की, तो उसके बाजू वाली आपकी पहले से ही खुदी हुई होती है. सो किसी की डिस्ट्रक्शन मत प्लान कीजिए, यू नो जिसका वक्त है वो रब ने सब लिख के रखा है अपने कलम से, यू नो. सो एंगर पे फोकस कीजिएगा. ये पॉजिटिव इमोशन भी हो सकता है जो आपको कुछ बना जाए लाइफ में, और ये नेगेटिव इमोशन भी हो सकता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंगर की, नेवर मेक अ डिसीजन इन एंगर. गुस्से में कभी कोई भी बड़े लाइफ का डिसीजन मत बनाइए. जस्ट बिकॉज आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है तो सीधा अब आपने डिवोर्स पे चलना है, ऐसा मत कीजिए करके, यू नो. अपने लाइफ के डिसीजंस हमेशा एक काम, पीसफुल और सबर से बनाइए, यू नो दैट रियली रियली हेल्प्स इन द लॉन्ग रन. चलें अब आगे बढ़ते हैं. ऊपर वाला फिर एंगर से ऊपर जाते हैं, वहाँ आता है प्राइड. ओके नाउ प्राइड भी एक तरह का पॉजिटिव इमोशन है और नेगेटिव भी है. तो मैं आपको प्राइड ना एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि प्राइड होता क्या है. पहली बात तो आप देखोगे एयरपोर्ट पे अगर आप गए हो, फ्लाइट तैयार है, सारे पैसेंजर्स बैठ गए हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, ठीक है, और उसने अपनी गाड़ी निकाली, अपना एयरक्राफ्ट निकाला है, रनवे पे खड़ा है. बट अभी तक उसने ऊपर की तरफ फ्लाई नहीं किया है. ओके, इंजन चालू है, सब पैसेंजर हैं, सब बंद हो गया है, ऑल सेट, ऑल रेडी, लेकिन अभी हाईवे पे खड़ा है कि बाबा जैसे ही मुझे हाईवे क्लियर मिलेगा मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा. ये है प्राइड का एक परफेक्ट एग्जांपल, जहां बंदे के पास होता तो सब कुछ है लेकिन अभी तक वो उस मुकाम पे नहीं होता है जहां खुदा चाहता है वो पहुंचे. तो प्राइड में ऐसे होता है कि आप ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत अपनी वैल्यू अटैच कर लेते हैं. मेरे पास बड़ा घर है तो मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं तो मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतने बिलियंस पड़े हैं तो मैं बड़ा आदमी हूँ. बड़ा आदमी आपको रब के आगे बनना है, आपको ये चीज़ें नहीं बड़ा इंसान बनाती हैं. जो अंदर से बड़ा इंसान होता है ना, वो बाहर से उसको दिखावे की ज़रूरत ही नहीं होती है. रियली मैं बोलती हूँ, जो अंदर से बड़ा इंसान होता है ना, उसे बाहर से बड़े घर, बड़े गाड़ियाँ, ज्वेलरी, ये चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, नीड ही नहीं होती है कि किसी को दिखाना पड़े कि मैं बड़ा इंसान हूँ करके. एक आपने मूवी देखी होगी, बहुत ही फेमस मूवी थी, 3 Idiots, यू नो, आमिर खान और करीना कपूर की. एंड जो करीना कपूर का जो मंगेतर था उस मूवी में, यू नो, वो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइड है, जहाँ वो बंदा इट्स ऑल अबाउट कि मेरे जूते इतने महंगे हैं, मेरे कपड़े पे केचप लगा दिया, सो यू आर नाउ योर मनी. वो कैरेक्टर बहुत अच्छे से वो बताता है कि आई एम माई मनी, मतलब मेरे पास जितना पैसा है ना वो मैं हूँ. सो प्राइड जनरली आप नोटिस करेंगे, आपको उस स्टेज ऑफ बोलते ना, आपको आपकी एसोसिएशन आपकी चीज़ों से बन जाती है, आपके लुक से बन जाती है, और आप थोड़ा इनडिफरेंट भी हो जाते हैं दूसरों की तरफ. आप उनको कुछ नहीं समझने लगते हैं, आप उनकी वैल्यू और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और एक तो इन्फ्लेटेड ईगो लगता है कि बंदा आपको दिख जाता है उसके ना हाव भाव में, वाइब में आपको दिख जाता है कि ये अपने आप को कुछ समझने लगा है, चाहे अंदर से वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा हो, लेकिन ऊपर से जैसे कहते हैं उसकी फ़्लाइट उड़ी नहीं है अभी तक, लेकिन जस्ट बिकॉज वो फ्लाइट में बैठा है तो वो हाईवे रनवे पे आया है तो उसको लगता है कि अभी मैं उड़ूंगा, अभी मैं ये, अभी मैं वो. सो इट्स लॉट ऑफ बोस्टिंग ऑल्सो इसमें होता है. एक तरह से अच्छी बात, अच्छा इमोशन, क्योंकि बंदा यहाँ तक भी पहुँचा है एज़ कम्पेयर टू शेम एंड गिल्ट, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग. बट देखें कि यहाँ ज़्यादा अटके ना रहें, यू नो, बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी इन द लॉन्ग रन. अब जो दुनिया में हम रहते हैं ना, बड़े लोग ये लेवल तक होते हैं एंड ये बहुत ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं करके, यू नो, ये सारे इमोशंस पे. चलें प्राइड से ऊपर चलते हैं करेज की तरफ. ओके, नाउ ये मुझे बहुत प्यारा इमोशन लगता है, ये जेन्युइन सेंस में आप पॉजिटिविटी की तरफ कदम रख चुके हैं. तो हम जब कहते हैं किसी को ना ये पॉजिटिव इंसान है, दैट मीन्स उसका पहला स्टेप है करेज, ठीक है. और हम कहते हैं ये नेगेटिव इंसान है, दैट मींस वो नीचे वाले लेवल पे रह रहे हैं, नेगेटिव वाले लोग. यहाँ से होती है असली पॉजिटिविटी शुरू. ओके, नाउ करेज में पता है क्या होता है, आप फॉरगिवनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं. कोई कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों नहीं हो, आप कहते हैं मैंने माफ़ करके आगे बढ़ना है, मुझे तुझे कटेरे में खड़ा करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा है. आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम यू, आई डोंट वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, मैं मेरे गोल्स में आगे बढ़ रहा हूँ, आप अपने गोल्स में. लाइक आप लिटरली, आप में एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ आ जाती है, जहाँ आप कहते हैं कि मैंने ना मेरे लाइफ पे फोकस करना है, मैंने तूने क्या किया क्या नहीं किया मैंने इस पे फोकस ही नहीं करना है, ठीक है. तो करेज में आप ना पॉजिटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आप लाइफ को ना एक बहुत पॉजिटिव वे में लेना शुरू करते हैं, आप पावरफुल फील करना शुरू, एम्पावरमेंट आना शुरू हो जाती है अंदर से ना. जहाँ जाते भी हैं, अगर आप उतने खूबसूरत नहीं भी लग रहे होते हैं ना दूसरों के कंपैरिजन में, आप कंपेयर करना छोड़ देते हैं, आप यू हैप्पी विथ यू, यू नो, यू स्टार्ट फीलिंग एम्पावर्ड फ्रॉम विद इन. आप अपने आप को परमिशन देते हैं कि आई कैन ग्रो, आई कैन लर्न. आप नई चीज़ें सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, हर इंसान से आप कुछ ना कुछ अच्छा खींचने की कोशिश करते हैं. अरे ये बात बहुत अच्छा करती है, चलो मैं इससे ये सीखूँगी. अरे ये कपड़े बहुत, इसका स्टाइल अच्छा है, मैं इससे ये सीखूँगी. अरे ये काम में नंबर वन है, मैं इससे डिसिप्लिन सीखूँगी. आप हर इंसान में ना जैसे अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं. आप में वो नेगेटिव इमोशन ऑफ जेलेसी, रिवेंज, ये चीज़ें आती ही नहीं हैं. ये होता है यहाँ से बंदे पॉजिटिव होना शुरू होता है करेज से. अब करेज से हम आगे बढ़ते हैं, विच इज़ न्यूट्रैलिटी. ओके, न्यूट्रैलिटी में क्या होता है, आपको एक सेंस ऑफ वेलबींग है और सेफ्टी. आप लाइफ के उस इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहाँ आप सेफ फील करते हैं, आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, आपको लगता है हाँ अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ फ्रॉम ऑल साइड्स. यू नो, आप में ट्रस्ट होता है, एक ना नेचुरल ट्रस्ट होता है. आपको ऐसे डाउट नहीं, आप वैसे फियर और डाउट में नहीं जीते, आपको ट्रस्ट आना शुरू हो जाता है लोगों पे, लाइफ पे, सिचुएशंस पे, इवन अपने आप पे, यू नो. और आप सेटिस्फाइड होते हैं दैट माय लाइफ इज़ स्वीट, आई एम सेटिस्फाइड विथ माय लाइफ, यू नो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है. यू नो, आपको गॉड भी आपको ऐसे लगते हैं कि अरे वो है मेरे साथ, यू नो, मुझे सपोर्ट कर रहा है. मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ, मैं शायद उसे समझ भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कि गॉड ना मुझे सपोर्ट, मुझे पकड़ के बैठा है करके. और आप इस स्टेज पे ना, न्यूट्रलिटी की स्टेज पे, आप बड़ा जल्दी चीज़ें रिलीज कर देते हैं. मतलब यू आर वेरी गुड विथ रिलीजिंग, यू नो, किसी ने कोई बात बोल दी, आप दूसरे दिन निकाल भी दोगे उसके दिमाग से. आप बोलोगे हाँ अच्छा इसने ऐसे बोला था, मुझे तो याद भी नहीं है अभी. अब आप फटाफट उसको अपने सिस्टम से ना हटाना शुरू कर देते हैं. ये आपका माइंड खुद ही करता है. आपको बोलने, आपको बोलते ना, उस बात पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. आपका माइंड इतना ब्यूटिफुली, जैसे आपका माइंड सुबह आपको बेड से उठाता है ना, वैसे आपका माइंड बड़ा ब्यूटिफुली आपको ये चीज़ें रिलीज़ करवाता है, पिछली चीज़ें हटाता जाता है. ठीक है, दैट इज़ न्यूट्रलिटी का स्टेज. ये भी बहुत प्यारा स्टेज है, बहुत पॉजिटिव स्टेज है. अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर, ये है विलिंगनेस का स्टेज. विलिंगनेस का स्टेज मतलब यहाँ आप पूरी तरह से पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में. यू नो, आपको मतलब ऐसे लगता है मैं दुनिया जीत लूँगा, वो वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है. मैंने कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में, वो वाली फीलिंग आती है. मैंने ना अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करना है, मैंने सोसाइटी में एक यू नो बहुत अच्छी जगह पहुँचना है, मैंने दूसरों की मदद करनी है. आप में वो ऑप्टिमिज्म आना शुरू हो जाता है, आपको लाइफ बड़ी होपफुल लगती है. आपको लगता है हाय कल कुछ अच्छा होगा, यू नो, मेरे साथ लाइफ में समथिंग ब्यूटिफुल will happen tomorrow. आप ना आपकी लाइफ बैठे बैठे आपको लगता है, नोटिस करते हैं आप जैसे खिल गई है, यू नो, एक फूलों की तरह आपकी लाइफ ना ऐसे मुस्करा रही है करके. आप इंस्पायर्ड फील करते हैं कि मैंने सुबह उठ के अपनी बॉडी का ध्यान देना है, मैंने जिम जाना है, मैंने वॉक पे जाना है, मैंने खाना सही टाइम पे खाना है, मैंने सोना सही टाइम पे. आप एक इंस्पायर्ड वे होते हैं. और आप हर चीज़ जो ये स्टेज होता है ना विलिंगनेस का, इसमें आप हर चीज़ इंटेंशन से करते हैं. दैट मीन्स आप कोई भी चीज़ करने से पहले आप मन में सोचते हैं इसका इंटेंट क्या है, मेरा इंटेंट क्या है इसके पीछे. अगर आप किसी की मदद भी करते हैं तो आप बोलते हैं कि मेरा इंटेंट क्या है ये काम करने से पीछे. अच्छा मदद करना है, अच्छा जेनरोसिटी है, अच्छा मैंने इसको पॉजिटिव बनाना है. तो आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है हर चीज़ के पीछे इस स्टेज में. चलिए अब विलिंगनेस भी एक पॉजिटिव स्टेट है, बहुत प्यारा स्टेट है. यहाँ से हम ऊपर चलते हैं एक्सेप्टेंस के स्टेज पे. अब जो एक्सेप्टेंस का स्टेज आता है ना, यहाँ मैं कहती हूँ अनदर लेवल ऑफ फॉरगिवनेस आप महसूस करते हैं. मतलब यहाँ आपको पता है क्या लगता है कि मेरे साथ जो गलत हुआ, आपको एक एक्सेप्टेंस आती है कि अरे ये तो होनी थी, ये तो होना ही था, इस इंसान ने आके मुझे ऐसे स्कार करना ही था, इसने ये बातें बोलनी थी. और बहुत अच्छा कि आपको उस इंसान के लिए शुक्र आना शुरू हो जाता है कि थैंक यू, यू नो, आपने मेरे साथ ये, कि आप ये नहीं करते तो मैं लाइफ में यहाँ नहीं पहुँचती. यू नो, आप मुझे घर से नहीं निकाल देते, आप मुझे बदतर वे में नहीं ट्रीट करते तो आज मैं अपने पैर पे खड़े होकर यहाँ नहीं पहुँचती लाइफ में. तो ये एक एक्सेप्टेंस लेवल बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लेवल है. यहाँ पे आपको एक्चुअल मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस समझती है कि this was meant to happen to me. You know, this was destined, this was written. Bhagwan ne wo chot bhi likhi thi, jaise main seekh kar yahan pahunchun life mein. So, ye bahut another level of forgiveness ho jata hai, jo aapke man mein aata hai. In fact, us insaan ke liye aapko shukar hi aata hai. और आपको लाइफ ऐसे लगता है सब सही चल रहा है, मेरी लाइफ में कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही चल रहा है. कोई परेशान भी चल रहा है ना, अरे ये रब की मर्ज़ी है. कोई सुख ला रहा है आपके लाइफ में, मेरे रब की मर्ज़ी है. कोई दुख दे रहा है आपको, मेरे रब की मर्ज़ी है. सो एक हारमोनी आना शुरू होती है. दैट इज़ एग्जैक्टली आपको ना लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बड़े प्यार से संजीदा वे में आप आगे जीते हैं करके. और आपको ऐसे गॉड को देख के लगता है ये तो कितना रहम दिल है ना, मैं इतनी गलतियाँ करती हूँ वो फिर भी मेरा साथ देता है. यू नो, मैं कितनी जगह उसको कभी प्रे नहीं करती, शुक्र नहीं करती, सब्र नहीं कर पाती, लेकिन वो मर्सीफुल है मेरा गॉड. मैं उसका हाथ फिर भी पकड़ के आगे रह रही हूँ. तो आप इस लेवल में ना एक ट्रांसेंड करते हैं फ्रॉम अ ह्यूमन से, आप सोल, आप रूहानियत की तरफ अब आगे बढ़ना शुरू हो रहे हैं. लाइक आपकी सोल है ना, ये इस लेवल से एक्चुअली में ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है. आप रूह के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आप एंटर करते हैं रूहानियत सोल के साथ. यू नो क्या होता क्या है, दैट इज़ व्हाट यू लर्न इन दिस फेज. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम एक्सेप्टेंस टू रीज़न. यू नो यहाँ आप ना अपने लाइफ को बहुत विजडम से देखते हैं. यहाँ आपकी प्रेयर्स विजडम मांगती हैं भगवान से. आपको ऐसा लगता है भगवान आप ना बहुत वाइज हो, मुझे आपने इस प्लेनेट अर्थ पे इस फैमिली में ऐसे ही नहीं भेजा है. आपको हर चीज़ के पीछे पर्पस दिखना शुरू हो जाता है. और आप एक्चुअली अपने आजू बाजू की लाइफ्स भी देखेंगे भगवान ने कितनी परफेक्टली लिखी होती है. यू नो ये ऐसा टाइम होता है आपका रीज़न का, जहाँ आप अंडरस्टैंड करते हैं लोगों को, लोगों की लाइफ्स को. यू नो हर चीज़ को आप बड़े प्यार से, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है आपके कि इसकी लाइफ ऐसे क्यों है, इसकी लाइफ ऐसे क्यों है, इसकी लाइफ में इसने क्या अच्छा कर्म किया जिसका फल इसको आज इतने सालों बाद भी मिल रहा है. यू नो आपको लाइफ ना मीनिंगफुल लगती है. आपको ऐसे नहीं लगता बस खाना पीना सोना कपड़े पहनना पार्टियाँ जाना, दैट्स नॉट लाइफ. आपको लाइफ में ना एक मीनिंग आना शुरू हो जाती है. आप बहुत वाइज, यू नो आपका देखने का तरीका बदल जाता है इस स्टेज ऑफ लाइफ पे. यू सी लाइफ सो ब्यूटिफुली. आपको हर चीज़ का पर्पस समझ आता है कि यार एक सीज़न में भगवान ने तभी ये सब्जियां क्यों दी हैं करके. मतलब नेचर का विजडम इतना प्यारा होता है. आपको अपने आसपास हर चीज़ का ना एक ये एक स्टेज है जहाँ आपको जवाब मिलने शुरू होते हैं. यू नो वेर यू स्टार्ट गेटिंग आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस यू हैड ऑफ लाइफ सो फार. ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों, ये स्टेज में आपको आके जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं. जो क्वेश्चंस आपने लाइफ की तरफ कभी किए होंगे ना 10 साल 15 साल पहले कि गॉड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये स्टेज पे आके आपको विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग आएगी और आपको समझ आना शुरू होगा कि हाँ ये इस वजह से मेरे साथ ऐसे हुआ. से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर बचपन में अपने फादर को बहुत गुस्सा करते देखा है, वेरी एंग्री मैन, वेरी वेरी एंग्री मैन, आपको पता भी नहीं चला आपने वो एंगर अपने अंदर कब पा लिया और वो चीज़ आप अपने बच्चों पे भी निकालने लगे. लेकिन ये स्टेज पे आके आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं, यू नो मैं ये कर रही थी बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन अब मैंने अपने आप को बदलना है. क्योंकि जैसे मेरे फादर ने मेरे लिए एक गलत रोल मॉडल किया, मैं अपने बच्चों के लिए सही रोल मॉडल बनना चाहती हूँ. यहाँ आपको लाइफ की, मतलब मैं कहती हूँ ये बड़ा प्यारा प्यारा स्टेज है, बहुत ही खूबसूरत स्टेज है. यहाँ लाइफ की मीनिंग आपको समझ आती है. आपने एक फैमिली में क्यों जन्म लिया है, आपके फैमिली के पैटर्न्स क्या हैं, आपके लाइफ के पैटर्न्स क्या हैं, आपको पहले कुछ बातें बुरी लगती थी वो क्यों लगती थी. आप अपनी गलतियां भी देखना शुरू करते हो इस स्टेज में. यू नो अरे मैं इतनी सेंसिटिव होती थी, छोटी छोटी बातें दिल पे लगा के रखती थी. आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो कि मैं ना पुरानी पुरानी बातें 10-10 साल पहले हुई बोली हुई बातें आज तक पकड़ के बैठी हूँ. मतलब मेरे को एक एक लाइन एक एक सीन याद है. तो दैट मीन्स आप अपने आप को पकड़ते हो कि मेरे को क्यों नेगेटिव चीज़ें क्यों याद हैं. मुझे ये 10 सालों में जो पॉजिटिव चीज़ें हुई वो याद क्यों नहीं है। मैंने दैट मीन्स मेरे अंदर एक एडिक्शन है नेगेटिव चीज़ों को पकड़ के रहने की। तो एक ये बहुत ही प्यारा स्टेज है रीज़न का, मैं कहती हूँ फैंटास्टिक स्टेज है ये, जहाँ आपको लाइफ बहुत बारीकी से नज़र आना शुरू होती है कि ये क्या मतलब लिटरली आप अपनी लाइफ हो, आजू बाजू हो, नेचर हो, विजडम ऑफ गॉड हो, और आप नोटिस करेंगे कि आप ये स्टेज पे बड़े कम लोग पहुंचते हैं, यू नो, बिकॉज ज़्यादा करके बड़े सारे लोग ना नीचे वाले इमोशनल स्टेज पे, सफरिंग के स्टेज पे होते हैं एवरीथिंग। और ये स्टेज पे आप दूसरों के लिए बहुत दुआएं मांगते हो, आप कहते हो भगवान इसका भी भला हो, भगवान इसका भी भला हो, यू नो, इसका अच्छा हो, और आपको ना कभी ऐसा नहीं लगता ये मेरे से आगे निकल गया है या मैं पीछे रह गई लाइफ में, या इसको ये सब ब्लेसिंग्स जल्दी मिली मुझे नहीं मिली। तो ये स्टेज में देर इज़ नो जल्दी, देर इज़ नो लेट, ये स्टेज में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, यू नो, कि जो हो रहा है मेरे लाइफ में सही वक्त पे, सही जगह, सही इंसानों के साथ हो रहा है, मैंने यहाँ से जहाँ जाना भी है इसमें भी एक पर्पस है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक इंटेंशन है इसके पीछे, ठीक है। तो ये होती है रीज़न की स्टेट। तो ये जो अभी पिछली मैंने आपसे डिस्कस की हैं स्टेज, ये लाइफ में गेट बाय करें, ये पॉजिटिव स्टेजेस हैं लाइफ की जिसमें आप लाइफ को जी रहे हैं, मैं कहती हूँ। अब जो आगे की मैं आपसे स्टेज डिस्कस करने वाली हूँ, यहाँ बहुत कम लोग हैं, मतलब मैं कहती हूँ बहुत बहुत कम परसेंटेज के लोग यहाँ पे हैं, लेकिन ये होती है स्पिरिचुअलिटी, यहाँ से शुरू होती है स्पिरिचुअल पर्सन होना, यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, जो आगे के मैं आपको स्टेज बताने जा रही हूँ, यहाँ से आप प्रॉपर रूहानियत में अपने आते हैं, लाइक यू नो। सो ये स्टेज शुरू होती है रीज़न के बाद है लव, लव की स्टेज में। अब जो लव की मैं बात कर रही हूँ ये लड़का लड़की का लव नहीं है, ये माँ बच्चे का भी लव नहीं, ये लव फॉर ह्यूमैनिटी है, यू नो, आपको लाइफ लगती है बड़ी जेनरस है, यू नो, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं ना वो किसी को मदद करने में हाथ खुला आता है, चल मैं ऐसे पैसे देता हूँ उसकी मदद हो जाएगी, आपको लगता है लाइफ मेरे से बहुत जेनरस रही है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत एक्सपीरियंसेस दिए हैं, घर बच्चा दिया है, शादी दी है, खुशियाँ दी हैं, घूमना, तो अब वो एक ह्यूमैनिटी लेवल पर उनको बाकी सबके लिए लव आना शुरू हो जाता है, यू नो, वो अंदर से ना बहुत लविंग, उनको खुद के लिए प्यार होना शुरू हो जाता है, दूसरों के लिए प्यार होना शुरू, कोई बुरा भी चलता है तो वो चुप करके बैठते हैं लेकिन उसको अंदर दिल में दुआएं देते हैं कि भगवान ये शायद गलत स्टेज ऑफ लाइफ पे, आप इसे ऊपर उठाओ, यू नो, मुस्कुराहटें डालो इसके फेस पे। तो आप ना अंदर से आप नोटिस करेंगे कि लव आपकी लाइफ में ना जैसे लाउड हो जाता है, यू लव एवरीथिंग, यू लव द सनसेट, यू लव द मून, यू लव हाउ ब्यूटिफुल नेचर इज़, आप किसी बच्चे को देखेंगे आपको उसमें भी प्यार नज़र आएगा, किसी कैट को देखेंगे उसमें भी प्यार नज़र आएगा, डॉग को देखेंगे उसमें भी प्यार नज़र आएगा, यहाँ से शुरू होता है रूहानियत का प्यारा सफ़र, वे यू फील लव फॉर ह्यूमैनिटी, वे यू फील लव फॉर एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स, यू नो, हर इंसान के लिए आपके मन में प्यार आता है, डॉग्स हो रास्ते पे, यू नो, देयर इज़ जस्ट आपकी वाइब ही पूरी तरह बदल जाती है, यू नो, यहाँ होते हैं जहाँ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक एक फूल पूरी तरह खिल जाता है, यू नो, आपकी सोल है ना वो रूहानियत की जर्नी में आते तो यहाँ खिलती है, ये वो प्यारा प्यारा स्टेज है जहाँ आप कहते हैं ब्लॉसम हो जाते हैं करके इन लव। एंड ये लव ना अनकंडीशनल होता है, मतलब ये आपको रोकता नहीं है इंसानों से, यू नो, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, यू नो, नेगेटिव पॉजिटिव, आपके अंदर अनकंडीशनल लव बर्थ कर चुका होता है इस वक्त, आपकी सोल में, आपकी वो बोलते हैं ना आपकी रूह में एक वो चीज़ डेवलप हो गई होती है, और ये है एक्चुअल लेवल पे मैं कहूँगी कि अब आप प्योर कॉन्शियसनेस में पहुंच चुके हैं, अब आप प्योर लेवल पे आप चल चुके हैं, आप उस रास्ते पे निकल चुके हैं। सो लव से अब आगे बढ़ेंगे स्पिरिचुअल लेवल पे, वो है पीस। ये भी प्योर कॉन्शियसनेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है, जॉय। यहाँ आपको बहुत शांति मिलती है, आप शांति से कहीं पे भी बैठ लें, आपको कहीं पे भी बिठा दें, फ्लाइट में बिठा दें, ट्रेन में बिठा दें, घर में बिठा दें, पार्क में बिठा दें, आपने शांति का आपका इमोशनल स्टेट ना सेरेनिटी बन चुका होता है, आप कंप्लीट फील करते हैं लाइफ को यहाँ पे। एक जैसे बोलते हैं ना, आप तृप्त हैं अंदर से, आपको वैसे लगता है यू फील वन विद गॉड हियर। आपको लगता है हाय, मैं आई एम जस्ट कंप्लीट इन दिस फेस, तो मुझे आज ले ले, मैं खुशी खुशी तरह पास आऊँगी करके, दैट फीलिंग ऑफ जॉय आता है करके। दैट्स वाई इसको बोलते हैं कि दिस इज़ लाइक, यहाँ पे आपको बड़े सारे रेवलेशंस भी होते हैं। आप बोलते हैं ना, रूह की खूबसूरती जॉय में नज़र आती है। कुछ लोग देखे होंगे, वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके फेस पे स्माइल होती है, उनकी ऑरा में आप देखेंगे कि कितनी सरीन है, कितने काम है, कितने रिलैक्स्ड हैं, कि हाँ कोई नहीं ना इससे निकल आएंगे, हाँ कोई नहीं ना इस प्रॉब्लम है ना, अरे प्रॉब्लम तो आनी ही है लाइफ की, उनको एक्सेप्टेंस बड़ी प्यारी होती है और वो कहते हैं हाँ मैं तो निकल आऊँगी इसमें से, जो रब की मर्ज़ी वो होगा मेरे साथ। मैंने मतलब वो एक, अगर बहुत बड़ी बीमारी भी अगर उनको हो जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि उनका एटीट्यूड इतना अच्छा होता है, इस जॉयफुल जो सोल होती है ना, वो कहती है रब का हुक्म ये उसने दिया है, उसने उठा के मुझे ले जाना है, उसने उठा के मुझे हील करना है, उसने उठा के मुझे आगे खुशियाँ देने के लिए लोगों के लाइफ में रखा है। सो देर इज़ अ लॉट, मीन्स अ लॉट ऑफ सेरेनिटी इन द सोल। बहुत उनको म्यूज़िक, कुछ लोगों को म्यूज़िक बाहर सुनना पड़ता है, आपके ऐप पे फ़ोन पे सुनना पड़ता है, तब आप अच्छा फील करते हैं। लेकिन ये जो लेवल पे लोग होते हैं ना जॉय के, ये म्यूज़िक उनके अंदर, उनके सोल में चल रहा होता है, एक रिदम होता है उनके सोल में जिसे वो सुन पाते हैं और उस के नशे में वो खुश रहते हैं करके। दे बोलते ना मस्त मलंग, इंसान मस्त मौला है करके, दैट इज़ द स्टेट ऑफ जॉय। तो चलें अब आगे, जॉय से ऊपर है पीस की तरफ। पीस यहाँ आपके इमोशनल स्टेट होता है ब्लिसफुल, भाई दिस इज़ अल्टीमेट, मतलब मैं इतनी खुश हूँ करके, वेरी पीसफुल हूँ, लाइफ परफेक्ट लग रही है, ऐसे लगता है भगवान हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट, मतलब एवरी देयर, मुझे उसको जाके एक मंदिर मस्जिद में नहीं मिलना है, वो हर जगह है मेरे लिए। तो एंड एक इल्यूमिनेशन आती है, एक आपको लाइफ में ना एक जैसे बत्ती नहीं चालू हो जाती है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मेरा रब तो हर जगह है, मेरे साथ है, हर मोमेंट मेरे साथ है और बहुत खूबसूरती से मेरे साथ है। सो इतना अंदर में एक प्यार और एक अजीब सी शांति, सब ठीक है, सब अच्छा है, लाइफ के वो स्टेज पे आप फील करते हैं कि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब पीस, लव एंड जॉय, ये तीन स्टेजेस जो मैंने आपसे अब तक डिस्कस की हैं, ये होती है प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर सोल्स बोलते हैं ना, वो होती हैं जो इस स्टेज में ज़्यादा जिए इमोशनली, उनके इमोशंस ना उनकी सोल में घर कर गए होते हैं ये तीन से, तो हम उनको प्योर सोल तब बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्योर कॉन्शियसनेस। अब इससे अगला है दैट इज़ एनलाइटमेंट, ओके, दैट इज अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, मतलब सबसे ऊपरी बोलते हैं ना। अब आपने देखा होगा, अगर आप कोई बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने जाते हैं ना, तो नीचे वाला जो फ्लैट होता है वो सस्ता होता है, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं वो महंगा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप बुर्ज खलीफा भी जाएंगे, जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है दुबई की, वहाँ पे भी आप देखेंगे नीचे फ्लोर का इतना नहीं है, लोग ऑल द वे ऊपर स्काई डेक तक जाते हैं वो पूरा व्यू लेने के लिए। नाउ ये है, हमारी सोल भी ऐसे ही करती है, वो नीचे से शुरू करती है, ऊपर जाते 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 वो बुर्ज खलीफा के टॉप स्काई व्यू पे जाके एनलाइटमेंट एक्सपीरियंस करती है। दैट मीन्स यहाँ पे ना उसको लगता है आई एम वन विथ लाइफ, गॉड इज़ सेल्फ, मुझ ही में तो है, यू नो गॉड इज़ विद इन मी, ये मेरे अंदर ही है। और यहाँ आपको ऐसे लगता है जैसे ये एक स्टेज है जहाँ मैं कहूँगी कि यू नो आपने बड़ी प्यारी वो कोट सुनी होती है कि खुदा भी कहता है बता मेरे बंदे तेरी रज़ा क्या है, यू नो दैट व्हाट इज़ योर विल, वो ही होगा जो तेरी मर्जी है। ये वो स्टेट है यू नो कि जहाँ आप हाईएस्ट व्यू पे आप हैं एंड दैट इज़ हाउ यू एक्सपीरियंस लाइफ। आप दूसरों की सारी लाइफ देखते हैं आसपास, सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन आपके मन में ना आप लिटरली वो स्काई डेक पे होते हैं, आप ऊपर से लाइफ देखते हैं और वो इतनी प्यारी लगती है आपको, आपको लगता है वन विद लाइफ, यू नो इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल वे टू लुक एट लाइफ। सो ये जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है, ये सारे एनर्जी स्टेट्स हैं, आपके इमोशनल स्टेट्स हैं। अब हर इंसान, जो इंसान जेल में भी कभी गया है ना, उसने भी कभी ना कभी एक मिनट ऑफ एनलाइटमेंट लाइफ में महसूस किया होगा, दैट एक मिनट ऑफ जॉय उसने महसूस किया होगा। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम सब लोग ना ये सारे इमोशंस महसूस करते हैं, बट हमारी कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हम किस इमोशन को सबसे ज़्यादा अपनी रूह के अंदर घर दे चुके हैं। ठीक है, तो आपको वो रियलाइज़ करना है कि आपकी मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में आप किस घर पे हैं, और आपको धीरे धीरे एक एक घर ऊपर बढ़ना है और कोशिश पूरी करनी है कि आप वो एनलाइटमेंट पे ज़्यादा टाइम रह सकें करके, यू नो जैसे एक फ्लाइट है वो एयरपोर्ट पे लैंड पे भी होता है, फिर एकदम ऊपर धीरे 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 टेक ऑफ के बाद फिर एकदम एक पॉइंट आता है वो सबसे हाई लेवल पे होता है करके, फिर वापस वो नीचे भी आता है ग्राउंड पे लैंड होने के लिए। तो हमारे इमोशंस भी हर इंसान के अंदर ना नीचे कभी सफरिंग वाले स्टेज पे होते हैं, कभी गिल्ट पे होते हैं, फिर ऊपर भी जाते हैं जहाँ पीस जॉय भी महसूस करते हैं, फिर और ऊपर जहाँ मोमेंट्स ऑफ एनलाइटमेंट भी महसूस करते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं एंगर की तरफ है एवरीथिंग। सो ये एक साइकिल है, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट जो आपने बात ध्यान देनी है कि आप रहते कहाँ हैं, आपके इमोशंस रहते कहाँ हैं करके। तो मैं चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट को ना आप एक मिरर की तरह, यू नो हम अपने आप को मिरर में देख के चेक करते हैं ना, मेरे बाल ठीक हैं, चलो मैं थोड़ा मेकअप कर लूँ, लिपस्टिक लगा दूँ, ये जूते पहनूँ, हम चेक करते हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस को मिरर में। तो ये पॉडकास्ट आज आपको ये इमोशंस दिखा रहा है, जैसे आप अपनी रूह को, अपनी सोल को चेक करें, यू नो कि मेरे क्या, मैं किस लेवल पे हूँ, मेरे इमोशंस कहाँ घर करके बैठे हुए हैं और मैं कैसे अपने आप को बेटर कर सकूँ करके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लॉट्स ऑफ लव एंड दिल से शुक्रिया, आप सबने इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स यू नो लिखे हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू सोनियाज़ पॉडकास्ट।